हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 106। आदित्य सुनैना को अपने अतीत का सच बताने के लिए अपने पुश्तैनी बंगले ले गया। वो बंगला वही था जहाँ वो अपने परिवार के साथ पहले रहता था और जहाँ उनकी शादी भी हुई थी। अंदर पहुँचते ही सुनैना को अपनी शादी का दिन याद आ गया और वो आदित्य से उसी बारे में बातें करने लगी। आदित्य भी सब याद करता हुआ सुनैना की तरफ देखकर थोड़ा रोमांटिक हो गया और उसे अपने करीब करते हुए प्यार और पैशनेट तरीके से किस करने लगा। सुनैना ने भी उसका साथ दिया और वे घर के हॉल में काफी रोमांटिक हो गए। उस वक्त वहां उन दोनों के अलावा कोई नहीं था, लेकिन फिर सुनैना ने आदित्य को ध्यान दिलाया कि वो उसे वहां क्यों ले आया था। आदित्य, प्लीज थोड़ा धीरे आराम से, मेरे पैर में चोट लगी है, याद है ना तुम्हें, हम अभी डॉक्टर के यहाँ से ही आए हैं। आदित्य सुनैना का हाथ पकड़कर सीढ़ियों की तरफ पढ़ा। सुनैना के पैर की चोट पर जोर पड़ा और उसे दर्द हुआ। सुनैना दर्द से कराही, आदित्य वही रुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि गुस्से में उसने सुनैना का ध्यान नहीं रखा। उसे गिल्ट होने लगा। सुनैना की तरफ देखकर वो धीमी आवाज में बोला, सॉरी, लेकिन तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता कुछ भी? अगर बताना नहीं चाहता तो फिर यहाँ लेकर क्यों आया और क्यों तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल किया? हाँ, तो तुम ऐसा रिएक्ट ही करते हो तो मुझे यही लगेगा ना, और हमारी शादी को तो 3 महीने हो गए हैं, लेकिन तुम अभी तक वैसे के वैसे मिस्ट्री पजल ही हो मेरे लिए। तुमने मुझे अपनी जिंदगी में शामिल तो लिया है, लेकिन शायद पूरी तरह से नहीं। आदित्य की बात सुनकर सुनैना मासूमियत से बोली और उसे पिछली बातें याद दिलाईं। वो तो इसलिए क्योंकि मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए था और मुझे पता नहीं था कि तुम कैसा रिएक्ट करोगी, और फिर तुम्हारी शादी तुम्हारे घर वालों ने जबरदस्ती करवाई मुझसे। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी इन सब के लिए मेंटली प्रिपेयर हो पाओगे, इसीलिए तो मैंने तुमसे अपने दिल की बात इतने दिनों के बाद कही। सुनैना की बात सुनकर आदित्य सफाई देते हुए बोला। सुनैना हल्का सा मुस्कुराकर उसके गालों पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, दिन नहीं साल लगा दिए तुमने तो, और अभी और वक्त लगा रहे हो। चलो ना, जहाँ भी चलना है, यहाँ पर क्यों रुक गए ऐसे इमोशनल होकर? सुनैना की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। आदि आदि, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं चल सकती हूँ, ठीक है मेरा पैर? वो तो तुम बहुत ज्यादा जोर से चल रहे थे इसलिए मैंने बोला, मैं बिल्कुल ठीक। आदित्य के उसे गोद में उठा लेने पर सुनैना शॉक हो गई और एक के बाद एक बातें बोलती रही। वो उसकी गोद से उतरने की कोशिश करती रही, लेकिन आदित्य में उसे अच्छी तरह से पकड़ रखा था। उसकी बातें सुनकर बोला, चुप करो, कितना बोलती हो तुम, और मेरी वजह से तुम्हारी चोट पर जोर लगा तो बस इसीलिए थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारी। आदित्य की बात सुनकर सुनैना कुछ नहीं बोली। आदित्य उसे सीढ़ियों के ऊपर एक कमरे के बाहर ले जाकर अपनी गोद से नीचे उतार दिया और उस कमरे का दरवाजा खोलने लगा। वो दरवाजा बाहर से लॉक था। आदित्य ने चाबी से दरवाजा खोला और हैंडल घुमाया, थोड़ा सोचते हुए दरवाजा अंदर की तरफ खोला। सुनैना ने उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया और मुस्कुराकर अपनी पलकें झपकाकर आदित्य को अंदर चलने का इशारा किया। सुनैना के साथ देने पर आदित्य में हिम्मत आई। एक गहरी सांस भरते हुए उसने कमरे का दरवाजा खोला और भारी कदमों से अंदर आया। सुनैना भी आदित्य के साथ कमरे में आई और चारों तरफ नजरें घुमाई। उसे सामने की दीवार पर एक आदमी की तस्वीर लगी हुई दिखी, जिस पर पुरानी और सूखी हुई फूलों की माला चढ़ी हुई थी। देखकर सुनैना समझ गई कि वो शायद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो कौन है? इस सवाल की उम्मीद में वो आदित्य की तरफ आंखों से देखने लगी। ये तस्वीर जो तुम सामने की दीवार पर लगी हुई देख रही हो, वो मेरे डैड हैं। सुनैना की नज़रों का मतलब समझते हुए आदित्य ने उससे कुछ पूछने से पहले ही तस्वीर के बारे में बताया। क्रमशः लास्ट पार्ट पर बिल्कुल भी कमेंट नहीं आए हैं। हाँ, तो भी हम ये बड़ा पार्ट अपलोड कर रहे हैं, और अक्षत नैना को अपने घर पर लेकर गया, और आदित्य के अतीत के बारे में भी कुछ ना कुछ तो पता चलने वाला है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि कोई भी आदित्य की स्टोरी जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, पता है, सुनैना के अलावा। तो फिर रहने देते हैं और कुछ सोचते हैं, या फिर जानना है आपको हमारे हीरो द मिस्टीरियस आदित्य सिंघानिया के बारे में? फटाफट कॉमेंट में लिखकर बताइए।